21 सुख के दिन बहुत जल्दी जल्दी बीत जाते हैं, या यूं कहिए कि जब मन सुख में उलझा हुआ होता है तब उसको काल का भान नहीं रहता। वृषसेन के साथ ही साथ लक्ष्मण और चित्रसेन भी बड़े होते जा रहे थे। भले ही बड़े हो जाएं, लेकिन माता पिता को उनकी संतान सदैव छोटी ही लगा करती है। वृषसेन 6 वर्षों का हो गया था। निरंतर बोलते रहना और अविरत हाथ पर चलाते रहना ही उसका स्वभाव था। अनेक शंकाओं से, प्रश्नों से वह राजभवन के सभी लोगों के नाक में दम कर देता था और थोड़ा बहुत किसी से डरता था तो महाराज से। राजसभा, युद्धशास्त्र और मृग्या से बचा हुआ सारा समय महाराज वृषसेन के साथ ही बिताते थे। उससे बातें करते समय वे भी छोटे बच्चों बन जाते थे। कई बार तो वृषसेन उनसे बड़े आश्चर्यजनक प्रश्न कर बैठता। एक बार वो महाराज से बोला, तात, आप तो बहुत ही स्वार्थी। सो कैसे वृषु, मुझको तो सारा हस्तिनापुर उदार कहता है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वे हंसकर बोले, नहीं, आप स्वार्थी भी हैं, नहीं तो आप हमारे लिए भी अपने ही जैसे सुंदर कुंडल न लाते। ऐसे कुंडल यदि सरलता से मिल जाते तब तो उनको प्रत्येक व्यक्ति ले लेता वत्स। तुझको अच्छे लगने वाले कुंडल यदि मैं काट कर निकाल सकता तो मैं तुझको अभी दे देता। मुझको अब वे भी अच्छे नहीं लगते। आप स्वयं कैसे काट देंगे उनको, कोई दूसरा भले ही काट सकता है। आप दोनों हाथ से कान और खड्ग आखिर पकड़ेंगे कैसे? यदि तुमसे हो सके तो तुम करके देखो। कर तो दूंगा, लेकिन आप रक्त आ गया तो माता मारेगी ना? नहीं रे, उसके आने से पहले ही तुम कुंडल निकाल लो, रक्त नहीं आएगा। और यदि आ भी गया तो मैं रोऊंगा नहीं, उसको बताऊंगा भी नहीं। अपने पिता के ही तरह हटी हुआ उसी समय शस्त्रागार में गया और शस्त्रागार से एक छोटा सा खड्ग लेकर उसको हाथों में नचाता हुआ लौट आया। महाराज की गोद में बैठकर उसने उनका एक मांसल कुंडल अपने नन्हे हाथ की चिमटी में पकड़ लिया। फिर एकदम क्षण भर रुक कर वह बोला, तात, मैं आपकी तरह स्वार्थी नहीं हूँ। मैं एक ही कुंडल लूंगा, एक आपके लिए रहेगा। यह कहकर उसने खड्ग संभाला। ठीक है, अपने भाग का तुम ले लो, जल्दी करो, उन्होंने उसको आज्ञा दी। अपने नीली आंखें बड़ी बड़ी कर वह अब क्या करेगा यह वो उत्सुक होकर देखने लगी। इतने में ही मैं वहां पहुंच गई। अपने नन्हे नन्हे दांतों से अधर ओष्ठ आवेग से दबाकर वह खड़ के धारदार फल को उनके कानों पर लगातार फिराने लगा, लेकिन खड़ के घास के पत्ते की तरह उसके कान पर केवल फिरता रहा। बड़ी देर तक वह प्रयत्न करता रहा। वह दोनों उसके परिश्रम पर हंस रहे थे। आखिर वह थक गया। उसके बाल मस्तक पर श्वेत बिंदु चमकने लगे। खड़ग भी उससे नहीं उठ रहा था। हाथ से उसको फेंक कर वह उनकी गोद में नीचे उतरा। उन्होंने पूछा, क्यों रे विशु, क्या हुआ? उसने जो उत्तर दिया वह इतना अनपेक्षित था कि उस दिन मुझको पहली बार ही यह विदित हुआ कि बड़ा समझदार है। अपने पराजय को तनिक भी स्वीकार न करते हुए वह लड़कपन भरी स्वाभाविकता से बोला, कुछ नहीं था, आपका कुंडल मुझको नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्या करूँगा उनको लेकर? आपके कान कितने बड़े हैं और मेरे कितने छोटे? मेरे कानों में बड़े नहीं लगेंगे क्या? उसके उत्तर से प्रसन्न होकर महाराज ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी ओर खींचा और उसके कुंडल रहित कान को बार बार चूमते हुए बोले, तुम्हारे पास कुंडल नहीं है, यही ठीक है। इन कुंडलों से मेरा क्या कल्याण होने वाला है यह मैं स्वयं नहीं जानता वत्स। वृषसेन की बाल किरणाओं में हमारे दिन ऐसे व्यतीत हो रहे थे जैसे कि गोफन से खेत के पक्षी फुर हो उड़ जाते हैं। कुछ घटनाओं की स्मृतियाँ ही शेष रह जाती थी। सूर्यास्त के बाद अलसाए हुए धूसर स्पष्ट संध्या प्रकाश की तरह। 22 अंगराज के साथ कभी कभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा दुग्धपान के लिए महल आया करते। उनके और वृषसेन की आपस में खूब पटने लगी थी। किसी के सामने हार स्वीकार न करने वाले गुरुपुत्र उसके सामने तत्काल हथियार डाल देते थे। इसी प्रकार एक बार वे महल आए। मैंने फलों से भरे हुए एक थाली में डाल के हाथों कच्छ में भेजी। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने उसमें से धीरे धीरे एक अंजीर उठा लिया। उसको उन्होंने धीरे से काटा। फिर उसकी ओर वे बड़े गंभीर दृष्टि से देखते हुए रहे। तब महाराज बोले, क्यों अश्वत्थामा, क्या हुआ? अंगराज, ऊपर से सुंदर दिखाई देने वाले इस फल में एक कृमि है। उसका जीवन भी ऐसा नहीं है क्या? ऊपर से सुंदर परंतु भीतर से सड़ा हुआ। अश्वत्थामन, इसमें इस फल का क्या दोष है? दोष किसका है इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु वास्तव में जीवन कैसा दिखाई देता है वैसा नहीं, यही सच है। इस फल को ही देखो, बाहर से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ईश्वर महाराज ने कुछ न कहा, लेकिन मैंने उन दोनों के वार्तालाप को सुनने वाले वृषसेन को धीरे से अपने आसन से उठते हुए देखा। वह उठा और सोपान से उतरकर राजप्रसाद के सामने का आंगन पार कर गया। फिर महाद्वार के से निकल चार दीवारी के बाहर चला गया। आखिर वह जा कहाँ रहा था? हम निर्डाल को उसको ढूंढने के लिए भेज रही थी, कितने में वापस आ ही गया। वह खरगोश की तरह छलांग लगाता हुआ आ रहा था। वापस आते ही वह महाराज और गुरुपुत्र के सामने धृष्टता के साथ खड़ा होकर अपनी मुट्ठी खोलता हुआ बोला, क्यों चाचा जी, इसमें भी कृमि होगा क्या? वह पत्थर का टुकड़ा था। उसका अद्भुत प्रश्न सुनकर गुरुपुत्र क्षणभर के लिए भी गंभीर हो गए। महाराज को देखते हुए बोले, अंगराज, सचमुच मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पुत्र ने कितना स्वाभाविक और सहज रूप से दिया। पत्थर का वह टुकड़ा विशेषण के आंत से लेकर वे ध्यान से देखते हुए बोले, इस निर्जीव पाषाण में कहाँ भला कृमि, कृमि फल में ही होगा, दोष दोष सजीव में ही होंगे। फलों के जीवन रस और कृमि पनपता है, बड़ा होता है, लेकिन फिर भी फल स्वयं उसको कभी बाहर नहीं निकाल पाता। मनुष्य के दोष भी ऐसे ही है, अज्ञान के जीवन रस पर मनुष्य के दोष पनपते हैं, बढ़ते हैं। विशेषण की पीठ थपथपाते हुए बोले, विशेषण इस टुकड़े को गवाक्ष से नीचे फेंक दो और वह अंजीर मुंह में रख लो। उन्होंने बाएं हाथ से वह पत्थर का टुकड़ा और दाएं हाथ से थाली से उठाकर दूसरा एक पूरा अंजीर रख लिया। विशेषण ने टुकड़ा गवाक्ष से नीचे फेंक दिया। अंजीर खाते खाते ही विशेषण ने गुरुपुत्र को एक बार और चौंका दिया। उनके वस्त्राच्छादित मस्तक की ओर देखता हुआ वह बोला, चाचा जी, मैं भी आपकी तरह सिर पर वस्त्र बांधा करूंगा। क्यों भाई, तुम तो अंगराज के पुत्र हो, तुमको तो स्वर्ण मुकुट धारण करना चाहिए, वस्त्र नहीं। गुरुपुत्र ने उससे पूछा, नहीं, स्वर्ण मुकुट का क्या उपयोग, इसका क्या ध्वज थोड़े ही बनाया जा सकता है। ध्वज? ध्वज के लिए तुम ऐसा वस्त्र सिर पर बांधोगे? हाँ, बड़े लोग कहते हैं कि लड़ाई में रथ पर लगे ध्वज गिरते रहते हैं। इस प्रकार ध्वज गिरने पर माता तक्षण दूसरा ध्वज कहाँ से मिल जाएगा? उसका उत्तर सुनकर हम सब हंसने लगे, लेकिन हम क्यों हंस रहे थे उस समय निष्पाप बालक की समझ में नहीं आया। 23. वृषसेन जब 7 वर्ष का हुआ तो मुझको और एक पुत्र हुआ। उसकी तरह सुप्रिय और को भी एक पुत्र हुआ। मेरे पुत्र का नाम सुषेण रखा गया और सुप्रिया के लड़के का नाम सुशर्मा। हमारे सास ससुर उनको देखकर फूले नहीं समाए। उन्होंने जीवन भर जो असीम कष्ट आए थे वे सार्थक हो गए थे। उनका लगाया हुआ कुटुंब का पौधा विशाल वटवृक्ष में बदल गया था। वे मुझसे सदा यही कहते, विशाली त्रुगृह लक्ष्मी है, तो सुख का भंडार लेकर ही आई है। हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था वही हो रहा। उनके पैर दबाते हुए मैं कहती, मेरे आने से कुछ नहीं हुआ महाराज, के लिए आपने जो कष्ट उठाए हैं उन्हीं का यह फल है। उसके लिए हमने भला क्या कष्ट उठाया, हमारी पर्णकुटी में उसने जन्म लिया, यही हमारा सौभाग्य है। पत्नी के रूप में तू उसको मिली, यह भी हमारा सौभाग्य है। यह सब पूर्व जन्मों का फल है बेटी। सास जी की गोद में बैठा हुआ सुषेण ठीक उसी समय हुंकार करता, मानो हुआ सबको यह याद दिलाता कि मैं भी पूर्व जन्म के उस फल का एक घटक हूँ। वो उसको थपथपाकर सुलाती हुई कुछ गुनगुनाती। मैं उनसे प्रार्थना करती कि वे उस गीत को उच्च स्वर में गाएं। तब वे कहती, वस्तु जब इस सुषेण के बराबर का था तब मैं यह गाया करती थी, अब अच्छी तरह याद नहीं रहा। और फिर चंपा नगरी की पर्णकुटी का वह गीत इस वैभव संपन्न राजभवन में क्या गाऊं? तू ही अपने पुत्र को एक गीत सुना जो इस भवन के अनुरूप हो। नेत्राधीन सुषेण को मेरे हाथों में देती हुई वो कहती, इस माता ने अपने पुत्र के लिए कष्टों के इतने अनगिनत पर्वत उठाए थे, ये सोचकर मैं यह अनुभव करती कि इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। 24. सुषेण की पीठ पर 1 वर्ष बाद ही मेरा विषकेतु पैदा हुआ। मैं 3 पुत्रों की माता बन गई। उन तीनों का आगमन से मेरे जीवन का उद्यान प्रफुल्लित होता था। विशेषण, सुषेण और विषकेतु, ये उस उद्यान के 3 सुवर्ण कमल ही थे। मुझसे कहीं पीछे नहीं रहना है, शायद यह सोचकर सुप्रिया ने भी 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम प्रसेन और भानुसेन रखे गए। चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन और भानुसेन सुप्रिया के 4 लड़के अपनी माता की तरह ही सुंदर थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम दोनों में से किसी के भी एक भी कन्या नहीं हुई थी। बार बार मेरे मन में यह विचार आता कि महाराज के इस 7 पुत्रों की एक बहन होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन उस कमी को देवर सोण जी ने पूरा कर दिया। जिस समय मेरे विषकेतु हुआ था उसी समय उनकी एक कन्या हुई थी। उसकी आंखें मछली की तरह लंबे आकार की थी, इसीलिए उसका नाम मीनाक्षी सुझाया। मीनाक्षी मेघमाला जैसे ही केतकी के वर्ण की बड़ी प्यारी लड़की थी। वह कभी नहीं रोती थी, महाराज अपने पुत्रों की अपेक्षा उसी पर अधिक प्यार करने लगे। उसको अपने सशक्त भुजाओं में लेकर वे मेरे पास आकर कहते, विशाली, तुमको अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान है ना? यह मीनाक्षी जब बड़ी हो जाएगी तब दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण तक इससे विवाह करने का प्रस्ताव करेगा। तुम अंगराग्य हो या कौरवराग्य होगी, कुछ भी हो, लेकिन बस यही न हो। मैं कहता, क्यों अजी? यदि वह कुरुओं की महारानी हो गई तो कल को आपको भी क्या उसका वंदन नहीं करना पड़ेगा? तो यह कहो ना कि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा पति किसी के सामने अपना सिर न झुकाए, कम से कम अपने संबंधियों के सामने तो नहीं ही। वे और किसी भी तर्क वितर्क नहीं करते थे, परंतु मुझसे सदैव उल्टे सीधे प्रश्न करते रहते थे। हार कर फिर मैं चुप हो जाती। कहते है ना कि एक चुप 100 को हराए। मैंने अच्छी से वे घंटों बाद खेलते रहते। उनको उनके साथ खेलते हुए देखकर जीवन के पिछले 20 वर्षों का समय कैसे और कहाँ चला गया इसका पता लगाने का मैं प्रयत्न करती, लेकिन मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। इस लंबे समय में मुझको यही पता चला था कि मैं हस्तिनापुर के ही था या स्वर्ग में। कसक इतनी थी कि सुदामन की स्मृति आंधी की तरह आकर कभी कभी मुझको व्याकुल बनाती रहती थी। इस समय यदि वह होता तो पूरे 25 वर्ष का हो जाता। मुझको वंदन कर व्यायामशाला में जाते हुए वह कहता, माता, मेरे बाहुकंटक दाव से व्यायाम के सभी शिष्य घबराते हैं, परंतु उसकी इस धूमिल स्मृतियों के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। 25. राजप्रसाद में कुछ और नवीन व्यक्ति आ गए थे। पितामह भीष्म ने कुरुओं के 100 युवराजों का देश देश के 100 कन्याओं से विवाह करवा दिया था। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता मधुमक्खियों से भर जाता है, वैसे ही राजस्त्रियों से राजप्रसाद गुंजित हो उठा था। कुरुओं के वैभव का शिखर हिमालय से होड़ करने लगा था। सब युवराजों की गृहस्थियों को देखने का रोमांचकारी संयोग इस राजप्रसाद के जीवन में पहली बार ही आया था। लेकिन मुझे आसपास श्रृंगारिक चर्चाएं सुनते ही पांडवों की याद आ जाती थी। कौरव और पांडवों में जो बहुत बड़ा अंतर था, मुझको भी कभी नहीं भूल पाती थी। कौरवों के प्रत्येक युवराज की एक एक पत्नी थी, लेकिन 5 पांडवों की कुल एक ही पत्नी थी। कौरवों की भगनी युवराज की दुशाला देवी का विवाह सिंधुराज जयद्रथ से हो गया था। मुझको आश्चर्य तो भीष्म पितामह पर हो रहा था। वे पराक्रमी थे, वृद्ध थे, उनका सब पर प्रभाव था। सबके मन में उनके प्रति आदरयुक्त भय था, लेकिन पांडवों के प्रति वे बहुत ही उदासीन दिखाई पड़ते थे। पांडव वन का इंद्रप्रस्थ में रूपांतर करने वाले पांडवों से मिलने के लिए वे कभी नहीं गए। उन पर होने वाले अन्याय का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। महाराज दुर्योधन के पांडव द्वेषी भावना को उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर कभी नहीं रोका। राजमाता कुंती देवी की घोर विपत्ति के समय भी उन्होंने कोई सहारा नहीं दिया। यह सब न जाने क्या हो रहा था। जो कुछ हो रहा था उसको वे तरस होकर देख रहे थे। पांडवों का इंद्रप्रस्थ का राज्य अब बहुत समृद्ध हो गया था। उनका इंद्रप्रस्थ राज्य पाषाण को उद्भिन्न कर अंकुरित होकर आकाश में सिर उठाने वाले वृक्ष की तरह एक महान आश्चर्य ही था। दिन प्रतिदिन वह वृक्ष बढ़ता ही जा रहा था। समीपवर्ती राज्यों के मल्ल योद्धा कारीगर गायक नर्तक और कृषक अब इंद्रप्रस्थ में एकत्रित होने लगे थे। हस्तिनापुर पूर्वजों के पराक्रम का फल था, लेकिन इंद्रप्रस्थ पांडवों के स्वकर्तित्व का उदाहरण था।